وقال يا بني، اور انہوں نے کہا اے میرے بچوں، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد. اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام انسٹرکشن دے رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ تم نے کیسے جانا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، انسان اسباب بھی اختیار کرے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرے. پہلے یعقوب علیہ السلام نے دیکھیں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو حفاظت کرنے والا، تو اس کے بعد تو کوئی انسٹرکشن ہی دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ساتھ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ تم نے کیسے کرنا ہے، کیسے داخل ہونا وہاں پہ. کیونکہ دیکھیں ایک تو ان کے بیٹے نا جوان تھے، خوبصورت تھے، بڑے کمال والے تھے، بڑے سٹرونگ تھے، اور 11 بیٹے ایک ساتھ جا رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو خطرہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کون آ رہے ہیں، اتنا سارا بڑا جتھا، اتنے بڑے بڑے جوان لڑکے ایسے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تھا جوان مرد چلے آ رہے ہیں. دوسرے یہ بھی تھا کہ نظر بد نہ لگ جائے، تو اس لیے وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، ودخلو من ابواب متفرقہ، بلکہ فرق فرق دروازوں سے داخل ہونا. ٹھیک ہے، تو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کوئی بچا تو نہیں سمجھتا تم کو اللہ سے کسی چیز سے بھی، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، ان الحکم للہ الا للہ، مگر اللہ کا نہیں فیصلہ مگر اللہ کا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی خطرے سے بچانے کے لیے وہ یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں. اب یہ نا ہم سب کے لیے اس کے اندر بڑے لیسنز ہیں، اس لیے اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا کہ انسٹرکشن دے رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ دیکھیں یہ انسٹرکشن دینا ان کا ایک سبب اختیار کرنا ہے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ہے نا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ احتیاط کی تو پھر اس احتیاط کرنے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. نہیں، پھر بھی کسی چیز میں بھی میں نہیں بچا سکتا تم کو، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچا نہیں سکتا تم کو اللہ سے کسی چیز میں. اب آپ کہیں گے نبی نہیں بچا سکتا تو اور کون بچائے گا؟ سب سے زیادہ تو انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ کے پیغمبر ہے اور ان یہ اللہ کے قریب ہیں، تو یہ تو ضروری اپنے بیٹوں کے لیے کوئی پھونک دیں گے اور اس کے بعد بس بیٹوں کی حفاظت ہی رہے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی بچ نہیں سکتا. تو کیا پھر تدبیر نہیں اختیار کرنی چاہیے؟ تدبیر بھی انہوں نے اختیار کی، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس بیلنس کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یاد رکھیں یہ آج کے حالات کے اندر بہت ریلیونٹ ہے اور بہت اچھی طرح ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم ایک کووڈ کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ تدبیر اختیار کرنے پہ کوئی توجہ نہیں ہے، وہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، مرنا تو ایک دن ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ماسک پہنو نہ کوئی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہو، کوئی تدبیر نہیں اختیار کرنی، کوئی اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس یہ سوچتے رہنا ہاں اصل حفاظت تو اصل میں اللہ ہی کی ہے نا، تو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کہ اتنی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ وہ اس میں بھی ایکسٹریم پہ ہی چلے جاتے ہیں، کیسے لگتا ہے کہ ان کا سارا بھروسہ بس تدبیر پہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کہیں ذکر نہیں، وہ بس سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کر لیا نا ابھی ہم سیف ہیں، یہ نہیں کریں گے تو بس ہم کہیں سیف ہو ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات کو بیچ میں سے اس کے نام کو نکال ہی دیتے ہیں. ان کے بھروسے صرف ماسک پہ، صرف سوشل ڈسٹینسنگ پہ، صرف ویکسین پہ، ان چیزوں پہ. یہ بھی غلط ہے، دونوں ہی غلط ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تدبیر بھی ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی، دس از دا رائٹ وے، اور ہم یوزلی ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، آئیدھر اس ایکسٹریم پہ یا بالکل ہی دوسری ایکسٹریم پہ. یہاں پہ دیکھیں ایک ہی وقت میں وہ تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، میں بھی نہیں تمہیں بچا سکتا، اور یہ میرا کہنا بھی نہیں تمہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں، فیصلہ اللہ نہیں کرنا، اگر اس نے ہی ہے جو بچانا ہے، اگر وہ بچائے گا تو بچ سکتے ہیں. तो फिर तदबीर की क्या जरूरत है, वो भी अल्लाह ही का हुक्म है कि तदबीर करो। बात समझ आ गई? बचने के लिए चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई चोर डाकू है, चाहे कोई और किसी किस्म का खतरा है, उसके से बचने के लिए आपको तदबीर करनी चाहिए, फिर उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बात समझ आ गई? और इस बैलेंस को समझें, ठीक है। दूसरी यहाँ पे बहुत अहम बात जो उन्होंने कही कि भाई एक दरवाजे से ना जाना, अनड्यू टेंशन ना लेना, ये इस तरह से ना करना, ये किस वजह से था? इसलिए कि नजर ना लग जाए। क्या नजर भी कोई चीज होती है? बाज लोग नजरे बद को कुछ नहीं समझते, वो कहते चलो कोई नजर नजर कुछ चीज नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जबकि आप सल्लम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है कि अल आइनु हक, नजर बरहक है, नजर लग जाती है। और आप सल्लम ने घूरने से भी मना फरमाया किसी की चीज के तरफ, या आप उसको आंखें भर भर के देखें। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती है कि आप सल्लम ने मुझे नजरे बद के दम कराने का हुक्म दिया, ये बुखारी और मुस्लिम में। इसी तरह बुखारी में, तिर्मिजी और मुस्लिम में ये भी है कि हजरत उम्मे सलमा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्ची को देखा जिसके चेहरा का रंग जो था ना वो मुतगैर हो रहा था, मतलब उसका रंग जर्द सा था। अब जो जैसे होता है रंग बच्चों का वैसे नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर दम कराओ क्योंकि इस पर नजर लगी हुई है। तो बार दफा ऐसे लोग भी होते हैं जो बता देते हैं कि इसके ऊपर नजर लगी, बार दफा इंसान को खुद भी पता चल जाता है कि नजर लगी है। बार दफा ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई सबब ही नहीं समझ आता कि ये है क्या चीज, को हर तरह का आप टेस्ट करा लेते हैं, समझ ही नहीं आता। वो भी नजरे बद हो सकती है, कंफर्म नहीं लेकिन हो सकती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अपने नवासों को, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को दम करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे बाप इस्माइल और इसहाक और ये भी दम किया करते थे। तो वो क्या दम करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाह तामाती मिन कुल्ली शैतान व हामति व मिन कुल्ली आइनिल लामति उईदुकुमा, क्योंकि वे दो थे ना, तो आप बच्चों को कर सकते हैं दम, उईदुकुम कह सकते हैं सारे बच्चों के लिए, एक है तो उईदु का या उईदु की, या और अपने लिए भी आऊदु बि कलिमात अल्लाह तआमाती मिन कुल्ली शैतान व हामाती व मिन कुल्ली आइने लामाते। अगर आइने लामा होती ना तो फिर क्यों कहा जाता इस दुआ में कि मैं हर शैतान से और हर हामा यानी ये जो जहरीला जानवर होते हैं उनसे और हर आइने लामाते नजरे बद से अल्लाह के जो कलिमात हैं उनकी पनाह तलब करती हूँ। ये दुआ है मसनून दुआओं में से, इससे दम किया जाए। तो हजरत असमा बिनते उमैस वो फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह जाफर की औलाद पर नजरे बद बहुत जल्द लग जाती, इनके शौहर थे जाफर रजी अल्लाह तआला, तो इनके बच्चों को नजर बहुत जल्द लग जाती, क्या मैं इनके दम किया करूं? तो आपने फरमाया हाँ, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत कर सकती है तो नजर तकदीर पर सबकत कर सकती है। और हमें हदीस में पता चलता भी है कि किस तरह से एक सहाबी को नजरे बद लग गई थी और वो ऐसे गिरे कि उनको तो उन्हें ऐसा बुखार चढ़ गया और मरने के करीब हो गए थे, तो आप सल्लम को पता चला, तो आपने फरमाया नजर का लगना बरहक है। फिर जिनका पता था कि लोगों से पूछा कि भी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भी फलां बंदे जो थे वो इतने मुतासिर हुए थे इनके जिस्म से, तो आप सल्लम ने उनको फरमाया कि आप वुजू करें। वो वुजू उन्होंने किया तो उनका वुजू का पानी लेके तो फिर जो सहाबी बीमार थे उनके ऊपर बहा दिया, तो वो फिर उसी वक्त ठीक होगा। तो अगर पता हो कि किसकी नजर लगी है तो उसको उसका गुसल का पानी या उसके वुजू का पानी लेके उस बंदे के ऊपर उंडेल दिया जाए। तो ये नजर ऐसी बुरी चीज है कि ये तो कभी इंसान को यानी कत्ल कर देती है, खत्म कर देती है, इसकी जान चली जाती है इसकी वजह से। तो इसलिए आपसे सर ने फरमाया ना कि नजर जो है वो ऊंट को हंडिया तक ले जाती, यानी इंसान इंसान के लिए भी यही, जानवरों को भी नजर लग जाती लेकिन इंसान के लिए ये कि उसकी मौत वाकई हो सकती। इसीलिए जब आप किसी की अच्छी चीज को देखें तो कभी हाउ हाय हाय ना ऐसे करें, बल्कि माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्ला कहें, तबारक अल्लाह कहें, अल्लाह मुबारक लहुम कहें, अल्लाह मुबारक फी कहें, इस तरह के कलिमात आप मुंह से अदा कीजिए कि अल्लाह आपको इसमें बरकत दे, और अल्लाह ताला जो अल्लाह ने चाहा वो ही दिया, और इस तरह के अल्फाज कहने से फिर नजर से वो बच सकता है। और बाज लोगों की नजर बुरी होती है बहुत ज्यादा, कि उनकी नजर बहुत जल्दी दूसरों को लग जाती है, और बाज लोग ऐसे हैं जिनको नजर बहुत जल्दी लगती है, यानी बाजों की नजर होती है जो बहुत जल्दी लोगों को लग जाती है, तो ऐसे लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। उनको जब पता है कि हमारी नजर लग जाती है दूसरे को, बाद मशहूर भी होते हैं कि फलाने की नजर बड़ी बुरी है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए और उनको इस चीज का एहतमाम करना चाहिए। और बाज लोगों को नजर, जैसे हजरत असमा बिनते उमैस ने फरमाया ना कि जाफर के बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इस तरह बाज लोग भी होते हैं उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और इसी तरह बाकी सबको भी नजरबद से बचने के लिए बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे वो ये भी कह सकते थे कि तुम ऐसे होके जाना, तुम ये पहन के जाना, और तुम जरा सीना तान के दाखिल होना, और तुम सारे इकट्ठे दाखिल होगे, लोगों को जरा पता चले किसके बेटे आ रहे हैं, और ऐसे हमारे तो यही ख्यालात होते हैं, घर ऐसा हो और गाड़ी ऐसी हो और शादी ऐसी हो, और ये सब चीजें हम इतनी प्रमोट करते हैं, इतनी शो ऑफ करते हैं, इसके अंदर इतना दिखावा करते हैं, और इससे डरते नहीं है कि नजर लग जाती। कई लोग, इतने बेशुमार लोग हैं जो आके कहते हैं जी हमारे इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ, बस फिर पता नहीं, समझ ही नहीं आई और बस डाउनफॉल हो गया। बस पढ़ने वाले इतने अच्छे बच्चे होते हैं, एकदम ही फिर पता नहीं क्या होता है, ऐसे डाउन होते हैं कि उनका दिमाग ही नहीं चलता। तो ये क्या है सब चीजें, ऐसे क्या उनको हो जाता है, या ऐसे क्या जवाल आ जाता है। बाज ने कहा कि शादी की बच्चे की, और उसके बाद ऐसी बीमारी घर में आई, या कारोबार में ऐसा नुकसान हो गया, या ऐसे उनको भुगतनी पड़ी, ऐसी चीजें। तो जब आप नजरों में आते हैं तो फिर ये काम तो होंगे ना, एक पैगंबर भी अपने बच्चों को नजरों में आने से मना कर रहे हैं, और हमें शौक है कि हम लोगों की नजरों में आए। उसके लिए जो नजरों में नहीं भी आ रहा, तो वो भी अपने आप को इतना दिखाता है फेसबुक पे, फलां फलां जो भी चीजें, ये सारी जो है उन पे अपने अपने कभी हुस्नो जमाल की नुमाइश, कभी कपड़ों की नुमाइश, कभी घरों की नुमाइश, कभी अपने हम यहाँ पे वेकेशन पे गए, कभी अपनी फैमिली की, मैं और मेरा हस्बैंड, और मेरा हस्बैंड तो मेरा इतना ख्याल करता है, वो मुझे ये तोहफे दे रहा है और वो दे रहा है, इससे क्या होगा। आप तो इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ नजरे बात को, और फिर जब लग जाती है फिर हम रोते हैं, आइए क्या हो गया, हमारे साथ क्यों हो गया ऐसा, और एहतियात करते नहीं है। ये ऐसे ही है, अब आप ना सर्दी के अंदर आप जा रहे हैं तो ना आप कोई जैकेट पहने, ना आप कोई स्वेटर पहने, और बाहर ऐसे ही निकल जाए, अपने आप के लिए खुद ही आप इंतजाम कर रहे हैं ना बीमार होने का। इसी तरह नजरे बद का भी हम खुद ही एहतमाम करते हैं। तो अपनी नेमतों को बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करें, जो नेमतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं उस पर हम्बल रहें, उस पर आजी इख्तियार करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, इतने भी वहम में ना पड़ जाए कि दुनिया से मिलना जुलना ही छोड़ दे, कि हाय नहीं 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 हमें नजर ना लग जाए, बस हर वक्त इसी में हमें नजर ना लग जाए। फिर ये बात भी सोचनी चाहिए कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कल, तो उसी पे मैंने भरोसा किया। ये भी नहीं कि आपको बस नजर का ही रहे, कि नजर ही है जो अगर वो जो मेरा नुकसान कर सकती है, नजर ही है जो मुझे बीमार कर सकती है, नजर ही है जो हमारे लिए कुछ बुरी साबित हो सकती है, बाकी अल्लाह ताला की जात को तो निकाल ही दिया। अल्लाह का भी कोई पावर है कि नहीं, या सिर्फ नजर ही है जो सब कुछ करती है, तो आपने तो नफा नुकसान का मालिक तो नजर को ही बना लिया। तो यहीं पे वो फाइन बैलेंस है जो आपको सीखना है ना, तो ये इन असबाब या तदबीरों को या इन चीजों को ही सब कुछ समझ लें कि इन पे भरोसा करने लगे, ना ही ऐसा करें कि इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें और आप कहें कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये आज आपको ये बात समझनी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इतनी कॉमन है ये चीजें, और आज हम इन चीजों के इतने यूज्ड हो गए, हमने दोनों एक्सट्रीम से बचना है। और ये भी नहीं फिर कहना कि ओ मैंने तो ये तदबीर की थी, उसके बाद ये हो कैसे गया, इसलिए इसका मतलब आपका भरोसा तदबीर पे था, उसके बाद आपको ये याद नहीं था कि एक अल्लाह है जिसका फैसला चलता है, और अगर अल्लाह ताला किसी को ना बचाना चाहे तो वो लाख तदबीरें कर ले, लेकिन वो नहीं बचेगा। क्या इसलिए वो भी कह रहे हैं ना, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता।